जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय
नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्र जातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते रक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने जो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वर्णन करते हैं उसके बारे में सुना था। चैतन्य महाप्रभु आगे अपने चर्चा को बढ़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही शुद्ध भक्ति यहा है ते प्रेमा हाय पंचरात्रे भागवते यही लक्षण कहाय कि यही शुद्ध भक्ति है। क्या शुद्ध भक्ति है? कल क्या कहा था लॉर्ड चैतन्य ने? क्या क्या है? भक्ति मैंने श्लोक नहीं पूछा, मैंने पूछा कि शुद्ध भक्ति क्या है। तो एक एक डेफिनेशन जो लक्षण है उसके आप बता सकते हैं। फर्स्ट हाँ, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? कृष्ण। प्राइमरी लक्षण कितने हैं?
तीन।
और सेकेंडरी लक्षण टू। तो प्राइमरी से सबसे पहला कौन सा है? कृष्णा। उस श्लोक में हाँ, तो भक्ति किसके लिए होनी चाहिए? केवल कृष्ण या और भी है उसमें? उनके अदर इंकार्नेशन आल्सो। हाँ, उसको क्या शब्द यूज किया है श्लोक में? अनुशीलनम। कृष्ण तो हो गया, अनुशीलनम का मतलब क्या है? एक्टिव एंगेजमेंट। तो उसमें कितने विभाग हैं? पॉजिटिव एंगेजमेंट और नेगेटिव एंगेजमेंट। और वो कैसी होनी चाहिए? मन वाणी बॉडी। और थर्ड क्या है शब्द क्या यूज किया है? अनुकूल, फेवरेबल। आगे अब अकेले बोल रहे इनको बोल रहे सेकंड में फर्स्ट क्या है अन्य अभिलाषिता अन्य अभिलाषा शून्यम का मतलब और ज्ञान कर्म वो आदि में है ज्ञान कर्म हो गया और आदि। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं और यदि भक्ति इस लक्षणों में मिलाप नहीं कर पाती तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यही शुद्ध भक्ति यह है ते प्रेमा है, और इसी प्रकार की शुद्ध भक्ति यदि होगी तभी प्रेम हो सकता है। और ये कहा कहा गया है पंचरात्रे भागवते यही लक्षण का है। ये लक्षणों को ऐसे नहीं कि महाप्रभु कह रहे, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि ये मैंने कुछ नया आपको प्रेजेंट किया है, यही चीज इन्हीं लक्षणों को पंचरात्र नारद पंचरात्र उसमें दिया गया है। नारद पंचरात्र, पंचरात्र का मतलब ही है जहाँ डेटी वर्शिप का संबंध है, और भागवतम, भागवतम का मतलब ही है कि जो श्रवण कीर्तन के ऊपर आधारित जो विधि है उसको भागवत विधि कहा गई है, और जो पंचरात्रक विधि है। तो आध्यात्मिक जीवन में ये दो विधि चाहिए, इसको कहा गया रेलवे ट्रैक, पंचरात्र विधि भी चाहिए और भागवत विधि भी चाहिए। ये दोनों चीजें प्रभुपाद ने स्थापित की, डेटी वर्शिप को भी स्थापित किया शुरुआत के दिनों से, और उसके साथ साथ श्रवण कीर्तन को भी सबके सामने प्रेजेंट किया या सबको ये दे दिया, श्रवण कीर्तन की जो विधि है जिसको भागवत विधि कहा गया है। भागवत विधि का मतलब ही एक प्रकार से कि स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से ये नारद पंचरात्र है जिसमें इसके लक्षण बताए गए हैं, और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक कोट किया है जिसमें वो कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति का ये डेफिनेशन यहाँ भी दिया गया है कि भक्ति क्या है। हाँ, भक्ति और डिवोशनल सर्विस मीन्स एंगेजिंग ऑल अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड द मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is free from all material designations, and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. तो ये नारद पंचरात्र के अनुसार ये definition है कि अपने सारे इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त करना, क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। अनुशीलनम में हमने ये कहा, इसी को देखा ना, अनुशीलनम, अनुशीलनम का मतलब एक्टिव एंगेजमेंट जिसमें सारे इंद्रियों में, उसमें मन आदि है, वाणी, सारी चीजें जिसको एंगेज करना। और इससे क्या होगा, दो इफेक्ट्स होंगे। नारदा कहते हैं कि वन इज फ्रीड फ्रॉम मटेरियल डेजिग्नेशन, इसलिए सर्व उपाधि, उपाधि का मतलब है यूजलेस कवर, है ना, कि उपाधि जैसे ये आत्मा के ऊपर बॉडी का कवर है, तो ये कवरिंग ये भारत में जन्म लिया है तो हम इसको भारतीय कहते हैं, अमेरिका में ये कवर बना हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, अमेरिकन। तो जहां कवर बनाया गया है तो मेड इन चाइना, इंडिया, रशिया, अफ्रीका कहा गया है, तो इसको क्या है, उपाधि है। तो नाना प्रकार की उपाधियों से हम घिरते जा रहे, छोटे है तो एक उपाधि है मैं छोटा हूँ, बड़े हो गए तो मैं बड़ा हूँ, या फिर कुछ डिग्री आप प्राप्त करते हैं तो वो भी एक डेजिग्नेशन है जो हमारे साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार से इस उपाधियों के आधार पर हम कई बार फोर्सफुली भक्ति करते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं तो मुझे वैसे ही, ब्रह्मचारी भी क्या है, एक उपाधि है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाहम विप्रो नच नरपतिर, मैं विप्र नहीं हूँ, विप्र ब्राह्मण नहीं हूँ, बल्कि लॉर्ड चैतन्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, नाहम विप्रो नच नरपति, नरपति में क्षत्रिय नहीं हूँ, नाहम विप्रो नच नरपति, ना अपि वैश्य, ना शूद्र, नाहम वर्णी, वर्ण कौन कौन से हैं? आश्रम तो चार हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नाहं वर्णी न च गृहपतिर् न वनस्थो यतिर्वा। गृहपति नहीं हूं मैं, गृहस्थ नहीं हूं, यतिर्वा यति नहीं हूं मीन्स सन्यासी नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? गोपीर भर्तुर, गोपियों के जो भर्ता है, पालन करने वाले हैं, कौन है वो? कृष्ण है। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो ये रियल डेजिग्नेशन है। तो ये बाकी उपाधियों से क्या होना है? मुक्त होना है। ये शुद्ध भक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको कोट करते हैं कि नारद पंचरत्रा में ये डेफिनेशन दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक चीज को कहा, सर्वे उपाधा ऋषि के न ऋषिकेश। सारे इंद्रियों में कौन सा शक्तिशाली इंद्रिया है? जीवा, जीवा आदि के द्वारा भी भगवत सेवा में नियुक्त होना। तो बहुत ही बाकी उपाधियों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे, और सब सर्वप्रथम है जिह्वा को हम एंगेज करेंगे तो बाकी उपाधियों से नेचुरली एंगेज हो जाएंगे। और भागवत में भी कहा गया है, मद गुण श्रुति मात्रे न मई सर्व गुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा अम्बसों बुधो। कई मई मई गुण श्रुति मात्रे न मई सर्व गुहाशय, कि मेरे जो गुण आदि है इनको सुनने मात्र से भक्त का हृदय क्या करता है? दौड़ने लगता है। कैसे दौड़ने लगता है? जिस प्रकार से गंगा समुद्र की ओर दौड़ती है, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? उत्तमा भक्ति है। मत गुण श्रुति, सुनने के लिए गुण, नाम रूप गुण लीला आदि, इसको सुनने के लिए यदि जो हृदय है यथा गंगा अम्बसों बुधो, जिस प्रकार से सागर की ओर गंगा दौड़ने लगती है, और वो कैसे? अविच्छिन्न। एक होता है छिन्न मीन्स रुकावट, लेकिन अविच्छिन्न मीन्स निरंतर। इसको ही कहा गया है कैसे मन लगना चाहिए कृष्ण में, तैल धारवत, जो तेल है, ऑयल है, आप उसको पोर करो, वो कभी ऐसे दिखता है कि वो बीच में स्प्रिंकल हो गया या अटक गया? नहीं, तैल धारवत बिल्कुल एक जैसा वो गिर रहा है। वैसे ही मन ऐसे होना चाहिए, एक जैसा भगवान में लगना, इसको कहते हैं उत्तम भक्ति, तैल धारवत। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीमद भागवतम से लक्षणों को कह रहे हैं। एक जगह कपिल देव भी कहते हैं, लक्षणम भक्ति योगश निर्गुणश ही उदारतम, कि लक्षण क्या है भक्ति योगश कि निर्गुणश। निर्गुण क्या है? गुणों से ऊपर, तीन गुणों से जो ऊपर है, भक्ति करने मात्र से उदारतः अहेतु की अव्यहिता, ये भक्ति पुरुषोत्तम है। और कैसे होनी चाहिए ये भक्ति? कैसे होती है? अव्यहिता कि बिना किसी रुकावट के, और अहेतु की बिना किसी हेतु के। इसी को श्रीमद् भागवतम में जब वर्णन करते हैं फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो यति भक्ति यतो भक्ति राधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। यही आत्मा की सुप्रसन्नता है, तभी परम सुख और निरंतर आनंद में कोई जीव रह सकता है यदि उसकी भक्ति ये दो प्रकार से हो रही है, अहेतु की बिना किसे हेतु के। जिसको ही चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? अन्याभिलाषिता, अहेतु की और अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं, बाधाओं से रहित। और किसके प्रति? या भक्ति पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण है, जो पुरुषों में उत्तम है। तो इस प्रकार से भक्ति का ये जो लक्षण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसा जब भक्ति करता है तो वो भगवत सेवा के अलावा कोई चीज नहीं चाहता, उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती, एक ही चीज चाहता है। वो क्या चाहता है? डिजायर क्या है? सर्विस। कृष्ण की जो सेवा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ एक श्लोक उद्धृत किया जिसमें वो कहते हैं, सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्येकत्वम् अपि उतः दीयमानम् न गृह्णन्ति विना मत सेवनम् जना। कि दीयमानम् न गृह्णन्ति, मैं देता हूँ फिर भी मेरे भक्त स्वीकार नहीं करते। क्या चीज? पांच प्रकार की जो पंच मुक्तियां हैं, सालोक्य भगवान के लोक में निवास करने की मैं प्रदान करता हूँ, फिर भी वो कहते भक्त नहीं स्वीकार करते। सारष्टी मतलब भगवान के समान मैं आपको ऐश्वर्य देता हूँ, देना चाहता हूँ, वो स्वीकार नहीं करते। सामीप्य मेरे नजदीक का जो निवास है, सारूप्य अपने जैसा रूप सुंदरता में प्रकट करना चाहता हूँ, एकत्वम एकत्वम का मतलब है लीन हो जाना, जो ब्रह्मवादी स्वीकार करते हैं, ये एकत्व वहां नहीं है, ये ब्रह्म में जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्मा भगवान की जो निराकार ज्योति है उसमें लटकते रहते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं ये मैं देना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे भक्त स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम जना, मेरी सेवा यदि नहीं हो रही है तो ये स्वीकार नहीं करते, सेवा के लिए स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शुद्ध भक्ति का एक जो लक्षण श्रीमद् भागवतम से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। अभी भक्त थोड़ी जन्म लेना चाहता है, बार बार कोई जन्म लेना चाहता है क्या? नहीं, लेकिन भक्त कहता है मैं जन्म लेना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, अब मैं तो अनेक अनेक जन्म लेना चाहता हूँ, किस लिए? आपकी भक्ति के लिए, आपकी सेवा के लिए। सैव भक्त ति योगाख्या अत्यंतिक उदारता एना तीव्रज त्रिगुणान मद्भावायोपपद्यते। किस प्रकार से जो भक्ति करता है, जो भक्त है, जहा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस भागवतम के श्लोक से कि वो अपना जो अत्यंतिक अपना जो अंतिम लक्ष्य है भगवत प्रेम, वो उसको प्राप्त करता है। मद भावया मद भाव, मेरा भाव कौन सा भाव है? कृष्ण के प्रति अटैचमेंट। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब इस डेफिनेशन को बता रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं, स्थापन भी कर रहे हैं, अपनी बात को ऑथोराइज कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आगे कहते हैं, भक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने हाय साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना है। तो कितनी भी साधना करो लेकिन ये दो वांछा यदि बना के रख रहे हैं हम, कौन सी वांछा? भुक्ति। भुक्ति में तो लंबी लिस्ट हो सकती है, भुक्ति का मतलब ही है भौतिक एंजॉयमेंट। तो ये भौतिक एंजॉयमेंट की जो भावना है, भौतिक एंजॉयमेंट को एक प्रकार से हमने पिछले श्लोकों में महाप्रभु ने कहा था निषिद्धाचार कुटी नाटी आदि, या भौतिक भोग, भोग के जो साधन है वो चाहना, और मुक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त होने की कामना करना केवल। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि केवल ये दो वांछा यदि मन में हम बना के रख रहे हैं, भोग करने की कई असीमित इच्छाएं, और ये जगत से केवल मुक्त होना भगवत सेवा का नहीं, मतलब मुक्ति का मतलब ही है कि वो यहाँ से भागना चाहते हैं लेकिन आगे कुछ सेवा नहीं स्वीकार करना चाहते। तो ऐसी जब यदि ये इच्छा मन में रहेगी भोग करने की और मुक्त होने की, तो कितना भी साधन कर ले प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबुतना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करते रहोगे तब भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम धन है वो प्राप्त नहीं कर सकते। और वो कैसा, यदि ये श्रवण कीर्तन अपराध से युक्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अपराध से युक्त। अभी कोई कहेगा कि श्रवण कीर्तन करना ही क्यों, बहुत जन्म करेंगे तभी भी नहीं होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? निरापराधे नाम लय पाए प्रेम धन, निरापराध होके लेना होगा। अपराध से युक्त श्रवण कीर्तन होगा तो बहु जन्मे साधना करेले प्रेम उत्पन्न न है, कि कई साधना करेंगे फिर भी जो प्रेम है भगवान के प्रति वो उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए रूप गोस्वामी ये जो दो इच्छा है, कौन कौन सी दो इच्छा?
भुक्ति
मुक्ति। हाँ, इसको किससे तुलना करते? पिशाचिनी। हाँ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। तो ये जो भुक्ति भोग की इच्छा और भौतिक जगत से जो लिबरेशन है, इसकी इच्छा यदि हृदय में कोई धारण करता है तो वो पिशाची के समान है। पिशाची का मतलब भूत, विचेस, विच। हाँ, तो ऐसी ये पिशाची है, पूतना के जो फॉलोवर्स है। ये यदि हृदय में बनी रहेगी, तावत भक्ति सुख सुख शास्त्र कथम अभ्युदयो भवेत। यदि ये होगा तो नहीं, ये दो चीजें हृदय में होगी तो रूप गोस्वामी कहते कि कैसे उदय नहीं होगा, कृष्ण भक्ति का कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होगा। तो ये दो पिशाची हैं। क्योंकि जो कृष्ण प्रेम एक छोटे से बालक के समान है, जैसे वो हृदय में अंकुरित होने लगता है, थोड़ी सी भी भावना हमारे हृदय में जागृत होने का प्रयास होती है। और यदि ये दो भावनाएं हैं तो ये दो प्रकार की पिशाचिनियां हैं, तो उस बालक को क्या करती है? वो खा डालती है। जैसे पूतना क्या करती थी? छोटे छोटे बालकों को फिस्ट करती थी। तो वैसे ही प्रेम रूपी जो थोड़ा सा अंकुरित बालक हमारे हृदय में है, कृष्ण के लिए छोटी सी आसक्ति है, हाँ, यदि ये दो इच्छाएं रहेगी तो वो इसको खत्म कर देगी। तो इसलिए ये जो बात कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये जो भौतिक इच्छा और जो मुक्ति की जो वासना है, इसको क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। जैसे ये डिजायर्स रहेगी वैसे ही भगवत प्रेम हमारे लिए बहुत दूर होगा। साधन भक्ति है तिहाय रति र उदय रति गाढ़ है ले तार प्रेम नाम कहे। अभी यहाँ से आगे जो चर्चा है वो आप सबके बिल्कुल ऊपर है, मेरे लिए भी समझना कठिन है और हम सबके लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा कष्ट होगा सुनने में, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ से आगे चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम है, फिर रस है, उनमें कितने विभद है, दाश रस किसमें उत्पन्न हुआ है, तो उसके लक्षण आदि क्या है, एग्जैक्टली क्या चीज है, जो अटैचमेंट है, अशांत है, दाश है, वात्सल्य है और माधुर्य आदि है, ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे, तो इन सबका बड़ा ही विस्तार से वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद ने बहुत अद्भुत तात्पर्यों का वर्णन किया है। तो हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं इनको जस्ट सुनने का। साधन भक्ति है ते है रति र उदय। अब ये रति क्या है? रति का मतलब है अटैचमेंट कृष्ण के प्रति। साधन भक्ति, रति का मतलब ये रथ हो जाना। हम कहते हैं ना किसी चीज में मैं रथ हो गया, अभी मग्न हो गया। तो जो साधना करने से, भक्ति रसामृत सिंधु में तो साधना भक्ति के भी दो अंग हैं, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, तो ऐसे कहा गया है। तो रति का मतलब यही है कि किसी भक्त में ये जो अटैचमेंट है वो डेवलप होता है, तो उसके लिए प्रेम वो उत्पन्न कर सकता है। तो साधना भक्ति का मतलब क्या है? कृति साध्या भवेत साध्या भावोसा साधना विदा। कि कृति साध्या का मतलब है, साधना भक्ति का मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा में लगना, इसको एक प्रकार से साधना भक्ति कहा गया है। और ऐसे साधना भक्ति से क्या होगा? साध्य भावा। कि जो 64 प्रकार के साधना भक्ति के अंग रूप गोस्वामी ने दिए हैं, उनमें से 5 बहुत प्रधान है। 5 कौन कौन से प्रधान है? एक है साधु संग, एक है हरि नाम, एक है मथुरा वास, एक है डेटी वर्शिप और एक क्या है? भागवत श्रवण। हाँ, तो 64 में से ये है, तो 5 प्रमुख है। तो इस प्रकार से भक्त जब अपने सारे इंद्रियों के सहित अनुशीलनम करता है इन 64 अंगों का, तो वो प्रेम की प्राप्ति करता है। तो इसी को ही साधना भक्ति कहा गया है। साधना भक्ति है ते है रति र उदय रति गाढ़ा है ले तार प्रेम नाम है। तो जब साधना भक्ति करता है जो भक्त है जिससे रति, रति का मतलब ही है कि भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो उसके हृदय में उत्पन्न होने लगता है और उस रति जैसे गाढ़ हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं प्रेम। प्रेम तो बहुत दिव्य धरातल है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को इनकी जो सूक्ष्म चीजें हैं भगवत भक्ति की आगे की उनका वर्णन करते जा रहे हैं। ये थोड़ा टफ है सब, लेकिन हम ट्राई करते जस्ट सुनने के लिए। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो अभी इससे आगे भी चैतन्य महाप्रभु कहते प्रेम के आगे भी क्या चीजें हैं, ये तो हमें ये करना चाहिए टॉपिक। क्या कहेंगे, स्किप करना चाहिए, लेकिन इतना ये भी नहीं है। तो प्रेम के आगे भी कुछ चीज है वो कहते हैं। प्रेम के आगे क्या है, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह। प्रेम के आगे स्नेह है, स्नेह के आगे मान है, मान के आगे प्रणय है, प्रणय के आगे राग है, राग के आगे अनुराग है, और अनुराग के आगे भाव है, और भाव के आगे महाभाव है। तो ये बहुत उन्नत जो चर्चा रूप गोस्वामी करते हैं, मैं जस्ट कुछ नोट्स बना रहा था अलग अलग जगहों से कि एग्जैक्टली ये चीजें क्या हैं। और जब मैंने इन चीजों को थोड़ा सुना और भक्ति रसामृत सिंधु आदि से पढ़ा तो मैंने सोचा बहुत इंटरेस्टिंग है एक प्रकार से, और बहुत सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया है। और तब पता चला कि हाँ वास्तव में क्या हम चर्चा करते हैं या इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं भगवद गीता के शांत निष्क्रिय वाद दिया है ना, क्या शांत भाव दिया है भगवान के पांच हिस्सों में ये रहता है हर एक भक्त का, तो वो एग्जैक्टली क्या चीज है। जब इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला इस बहाने तो मुझे लगा कि हाँ सही में ये जानना चाहिए हम सबको, या कम से कम मुझे जानना चाहिए ठीक ढंग से। प्रेम बुद्धि क्रमे वृद्धि क्रमे नाम स्नेह। स्नेह का मतलब है, तो सबसे पहले तो भाव, हम सोचते हैं ना जड़ भरत भाव के धरातल में भी थे तो भी क्या हो गया, उनका पतन हो गया। तो भाव क्या है, मतलब प्रेम कृष्ण के प्रति जो पूरा प्रेम उदय नहीं हुआ उसको क्या कहा गया है, भाव। मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ लेकिन सब जगह क्या है, प्रकाश है, इसी को ही भाव कहा गया है। तो ये जो मतलब भाव का मतलब है कि वो कृष्ण को अभी अच्छी तरह से पसंद करने लगा है अपने हृदय में भगवान के लिए। जिस प्रकार से सूखी चीज को गीला करने किरण सूखी चीज को गीला करे तो वैसे ही उसका जो हृदय है धीरे धीरे क्या होता है, कृष्ण नाम रूप गुण लीला को सुनते लगता है, सुनने लगता है, तो वो कोमल बनने लगता है। और कोमल बनने का मतलब ये धीरे धीरे क्या है, वो भाव के धरातल पर है या भाव का अनुभव कर रहा है। इसी को चैतन्य महाप्रभु कहते कि एक मणि होता है जिसका नाम है सूर्यकांत मणि। वो सूर्यकांत मणि क्या है कि जैसे सूर्यकांत मणि के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस सूर्यकांत मणि से पसीना निकलने लगता है। तो वैसे ही जैसे ही जो भक्त है अपने चित्त में भगवान के बारे में जैसे याद करने लगता है तो वैसे उसका हृदय थोड़ा पिघलने लगता है भगवान के प्रति, और इसी को भाव कहा गया है। और भाव के आगे क्या है, प्रेम। प्रेम वो चीज है जो हृदय को पूरी तरह से कोमल बना देती है। हमारे लिए अभी भौतिक प्रेम है, भौतिक भाव है, इन चीजों को बिल्कुल आप ये देख सकते हो, दूसरे भौतिक जगत में भी ये सारी चीजें प्रकट होती हैं भौतिक संबंधों में। और ये टोटली दिव्य धरातल है जहां प्रेम का मतलब ही है कि जो भाव जब हृदय को पूर्ण तरह से कोमल बनाता है और ये भावना उसके हृदय में होती है, ममत्व की भावना। ममत्व का मतलब क्या है? कृष्णा मेरे हैं। अभी हमें लगता है कृष्ण मेरे हैं, नहीं भी अब मेरे और कई चीजें हैं कृष्ण के अलावा। हाँ, लेकिन ये प्रेम का धरातल है जहां ये भावना होता है, होती है कि कृष्ण मेरे हैं। और सारे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त होता है पूरी तरह से। और जो कठोर, इसका मतलब है कि जैसे कोई बहुत कठोर चीज है वो बहुत अधिक सॉफ्ट हो जाती है। हाँ, और उसका हृदय कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और प्रेम से बहुत अधिक भरा रहता है, जैसे कि कोई बादल है वो जल से भरा होता है। तो इसी को प्रेम कहा जाता है। और प्रेम के आगे भी ये चीजें किसने दी है? सारे चैतन्य महाप्रभु की ये देन है। इसलिए गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। इसलिए महाप्रभु का जब आए तो उन्होंने जो भक्ति का जो सर्वोच्च भावना है, सर्वोच्च चीज जो इस ह्यूमन फॉर्म में अचीव कर सकते हैं, अनर्पित चरम चिरात, जो आज तक अर्पित नहीं की किसी ने, वो चीज चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे भक्ति की जो इंट्रिकेसेस है इनको एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा सा यही है, लेकिन आप थोड़ा टॉलरेट करिए, हम जस्ट डिस्कस करते हैं। तो जो प्रेम है उसके आगे भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम वृद्धि क्रमे नाम। वो फिर और एक प्रेम आगे और एक भाव आता है इसी उससे भी आगे। ये तो जनरल भाव है, उसके बाद प्रेम, और आगे भी एक भाव आता है जिसको मेन भाव कहा गया है, स्नेह। टोटली मेल्टिंग। भाव का मतलब है कि वह शुरू होता है, मेल्टिंग प्रोसेस। सॉफ्ट का मतलब कोई और अन्य अभिलाषा से नहीं, और वो केवल कृष्ण को ये भावना होती कि कृष्ण मेरे हैं। ये बहुत उन्नत स्तर है। अभी हम नहीं सोच सकते कि हमारे हृदय की क्या, अभी सोच सकते कि एग्जैक्टली हृदय की क्या दशा है। तो उसके लक्षण भी आगे आगे बताए हैं, तो इसको हम ये भी नहीं कर सकते, अपने धरातल पर नहीं जान सकते ऐसा कुछ हो रहा है। तो लॉर्ड चैतन्य ने आइडियल एग्जाम्पल प्रेजेंट किया अपने, जिससे कुछ हो रहा है तो वो क्योंकि नाम जप करते करते उनको कुछ होने लगा। हाँ, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करे लो, पागल हो रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है मेरे हृदय में। तो वो कहाँ चले गए? गुरु के पास। गुरु मोरे मूर्ख देखी, हाँ उन्होंने मूर्ख देखकर मुझे ये दिया है, तो उनके पास ही गए, फिर उनको ये चीज बताई कि अभी आप बताएं, क्योंकि जो उन्नत भक्त और अधिक तरह से जानते हैं, हम तो बस चर्चा कर सकते हैं या फिर स्पेक्युलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या है, कुछ यदि हो रहा है, और बहुत टफ है इस स्टेज में कुछ होना किसी और चीज के लिए जो कोमल होगा जो हृदय है। हाँ, ये तो इसलिए रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने दी है ये शिक्षा, और ताकि हम इससे गुजर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझते हुए जाए, फ्यूचर में चाहे गुरु वैष्णव आदि की कृपा से हम इसको और गंभीरता से समझ सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो मुझे भी आगे पता नहीं था कि ये सब चीजें आने वाली है रूप शिक्षा में। मैं पहले पढ़ा था कभी, लेकिन मुझे याद नहीं था, मैंने देखा ये आ रहा है बीच में कुछ तो लेकिन अभी थोड़ा सा उससे गुजर सकते हैं। हाँ, तो जो कुछ मैंने कुछ ग्रंथों से नोट किया या फिर भक्तों से सुना अलग अलग लेक्चर्स में इन चीजों को, तो मैं सोच रहा था उसको मैं रिपीट करूँ। रूप गोस्वामी के जो लॉर्ड चैतन्य ने प्रेजेंट किया है, तो फिर ये भाव कौन से शुरुआत की थी मैंने, जहां अधो श्रद्धा तथा साधु संग अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। तो वो जो भाव है वहां से अभी हम शुरू कर रहे हैं कि भाव के बाद क्या है, प्रेम, और प्रेम के बाद क्या है, स्नेह। ऐसे नहीं, स्नेह। तो स्नेह क्या है कि ऐसा जो चित्त जो बहुत अधिक सॉफ्ट हुआ है कृष्ण के लिए, हाँ सांद्र चित्त कहा गया उसको, वो द्रवित हो जाता है, और द्रवित होने का मतलब ही है उसको स्नेह कहा गया है। संस्कृत द्रवित में स्मेल्ड, हाँ तो उसको संस्कृत में तेल या घी कहा गया है। तो द्रवित होने का मतलब है कि पूरी तरह से मेल्ट होके कोई चीज बहने लगती है, हाँ उसको द्रवित होना कहा गया। जैसे ऊंची जगह कोई अपने तेल रखा है ऑयल, और वो नीचे अब जा गिरा रहे हो तो वो बहने लगता है। तो उसी प्रकार से भक्त का जो हृदय है जहां तहां हो वो कृष्ण के लिए क्या होता है, बहने लगता है, कृष्ण की ओर बहने लगता है। और उसी में ये भावना आती है कि कृष्ण से एक क्षण का भी वियोग वो सहन नहीं करता, सहन नहीं होता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, युगायतम निमिषेन। वो जो 8 श्लोका है वो अलग अलग स्टेजेस में है, इन सारे स्टेजेस में वो श्लोकाज है, हाँ लेकिन उसको अलग प्रकार से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। आश्लेष्य वा पादरता, वो महाभाव का स्टेज है, इसमें जो हमने महाभाव कहा वो महाभाव का स्टेज है। आश्लेष्य वा पादरता विनष्ट माम, वो महाभाव का स्टेज तो केवल आगे हम सुनेंगे कि किसके अंदर है। हाँ तो इस प्रकार से वो जो श्लोकाज है उसके ऊपर एक बुक लिख दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने, भजन रहस्य, जिसमें इनको सिस्टमैटिकली एक एक स्टैंजर्स को उन्होंने लिया कि कौन से लेवल में कौन सा श्लोक ये हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेजेंट किया है। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने शिक्षाष्टकम के ऊपर कॉमेंट्री भी लिख दी एक एक श्लोक के ऊपर, बड़ा और एक ग्रंथ। इस प्रकार से वो श्लोकाज इन चीजों को ये करते हैं। तो ये स्नेह का धरातल है जहां भक्त को एक क्षण का वियोग भी कैसे लगता है, युगों के समान है। हाँ युगायतम निमेषेन चक्षुषा। हाँ तो इस प्रकार से ये स्नेह है, और स्नेह के बाद क्या है, मान। मान का मतलब ये है क्या, मान, मान प्रकट होना। एक तो अमानिना मान देना वो मान नहीं, मतलब स्नेह जब परिपूर्ण अवस्था में प्रकट होता है और भक्त बहुत सुख का आस्वादन करने लगता है, कृष्ण के प्रति अटैचमेंट का जो सुख है वो आस्वादन करने लगता है, और वो सुख वो प्रेम की नदी के समान है, और उस नदी में कई बार भंवर उठने लगते हैं। भंवर को क्या कहते हैं, होता है ना राउंड वर्लपूल, हाँ वो उठने लगते हैं बीच बीच में। तो उसको जो विद्वान गण है या आचार्य गण है उनको क्या कहते हैं, मान कहते हैं। मतलब जो प्रिय व्यक्ति है उसके प्रति प्रतिकूल भाव उठना, मतलब बोलना नहीं। जैसे आपने सुना ना श्रीमती राधा रानी मान प्रकट करती है, इसलिए बरसाना की परिक्रमा करते हैं गहवर वन में, तो मान क्या है वहां, मानगढ़ है। मानगढ़ का मतलब है कि प्रेम है लेकिन क्या करना, बीच बीच में बात नहीं करूंगी आपसे या क्रोधित हो जाना भगवान के प्रति। लेकिन लव ये किस कारण से आया है, तीव्र प्रेम के कारण से ये चीज आई है। अदक्षिणा जो भाव है प्रेमी के प्रति वो प्रकट होना ये आता है, खास करके ये गोपियों में आ जाता है। जैसे कि एक बार मतलब जैसे नदी है और नदी में बीच में भंवर भी आते हैं, तो ये भंवर की तुलना मतलब प्रेम है लेकिन बीच बीच में ये भाव आना, क्रोधित हो जाना, मान प्रकट करना, इसकी तुलना भंवर से की गई है। क्योंकि नदी तो फ्लो है प्रॉपर, ये तो उल्टी मतलब क्या कहेंगे, भंवर ठीक चीज नहीं है नदी में। तो उसी प्रकार से ये क्रोधित क्रोध होना, मान आदि प्रकट करना ये ठीक नहीं है, लेकिन इससे भी कृष्ण को और अधिक आनंद मिलता है। हाँ इसी को ये मान प्रकट कहना। जैसे एक बार कृष्ण मिल रहे थे तो कृष्ण ने कहा गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को, आपके मुख जो है चंद्रमा के समान है, सारी चीजें चंद्रमा चंद्रमा कहने लगे, आपके नख तो 10 चंद्रमा है। हाँ तो ऐसा कह रहे थे, तो फिर बीच में भगवान ने कहा कि आपका जो आपके शरीर में तो चंद्रमा का समूह है। तो फिर राधा रानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि समूह का मतलब है अवली, तो जो इनके जो प्रतिस्पर्धी हैं किनके, श्रीमती राधा रानी, उनका नाम चंद्रावली है, तो कृष्ण की इस बात को सुनकर श्रीमती राधा रानी बहुत क्रोधित होती है और कहते हैं कि मेरे साथ आप खड़े हो लेकिन तुम कपटी हो, हाँ तुमको चंद्रावली का स्मरण हो रहा है। तो इस प्रकार से क्रोध का रूप धारण कर लिया उस प्रेम ने, और फिर कृष्ण को भी आनंद आता है और कृष्ण मनाने लगते हैं, देही पद पल्लवम उदारम। यही जो शब्द था जो जयदेव गोस्वामी लिखने के लिए वो कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे अपने गीत गोविंद में, नहीं कि आपने सुना ना वो पास टाइम जयदेव गोस्वामी और उनकी वाइफ पद्मावती का, हाँ कि वो ग्रंथ लिख रहे थे गीत गोविंद, तो बीच में एक चीज उनको स्फुरित हुआ है कि भगवान ने श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने सर में रख लिया है। अब ये लिखना कैसे, मतलब डिफिकल्ट चीज है ये, क्या है, क्या चीज आ गई मेरे इसमें, ऐसे कभी हो सकता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है वो अपने हेड में किसी और के चरण ले रहे, हाँ ये तो चीज ठीक नहीं है। तो फिर इस प्रकार से भगवान स्वयं आते और ये जो दो सेंटेंस है देही पद पल्लवम उदारम, इसको जो भगवान है इस चीज को लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि स्नेह के आगे मान है, और कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं जब अपने भक्तों को मनाने में, और इतना क्रोध धारण करता है जो भक्त है। एक जगह वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि जितनी भी काली वस्तुएं हैं वो मुझसे दूर हटा दो, और जितने भी तमाल, क्योंकि वो काली चीज नहीं देखना चाहती थी, इसको क्या कहेंगे मान, तो तमाल वृक्ष भी है, वो कहती है गोपियों को इन सबको सफेद कर दो, और जो कोयल है उसको पकड़ो और उसको सफेद कलर से कर दो और भगा दो। हाँ कहते मैं इस काली चीज को नहीं देखना चाहती, छी छी करने लगती है, तो इसको मान कहा गया है। और महाप्रभु कहते मान के आगे क्या है, हाँ प्रणय। अब प्रणय का मतलब ही है कि जो भक्त है, हाँ ये सब भगवान के जो वृंदावन के भक्त हैं, विशेष रूप से गोपियां श्रीमती राधा रानी आगे, हाँ उनके हृदय में ये सब चीजें प्रकट होती है। तो प्रणय का मतलब ही है कि मान धारण किया है, लेकिन ये विश्वास भी है कि भगवान मुझे क्या करेंगे, मनाएंगे, इसको क्या कहा गया है प्रणय। तो इसमें दोनों को आनंद है, गोपियों को मतलब भक्त को भी आनंद है और भगवान को भी आनंद है, उनको मनाने में आनंद आता है। तो भौतिक जगत में इसका रिफ्लेक्शन है, आप टोटली देखेंगे भौतिक जगत में क्या है, रिफ्लेक्शन, विकृत है वो जो चीज है। तो इस प्रकार से ये प्रणय है, और प्रणय के आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राग। राग का मतलब क्या है कि भक्ति करते करते, जनरल चीज के लिए राग को मैं बताता हूं, भक्ति करते करते भक्ति में दुख भी हो रहा है तो वो दुख भक्त को क्या कर देता है, आनंद, आनंद अनुभव होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते तुम्हार सेवाय, तुम्हार सेवाय, आपकी सेवा में जो दुख है वो मुझे आनंद प्रदान करता है। तुम्हार सेवाय दुख है जत सहित परम सुख। तो चैतन्य महा भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हे कृष्ण, आपकी सेवा में जितना भी अधिक दुख है वो मुझे क्या महसूस होता है, आनंद। तो ये जो रूप गोस्वामी को लॉर्ड चैतन्य कह रहे हैं कि जो राग का जो धरातल है वो यही है कि भक्त अत्यधिक दुखी होने पर भी, जैसे चाहे फिर उसका धन हानि हो रहा है या लोग उसका लांछन कर रहे हैं या स्वजन उसको भगा रहे हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, हानि आदि होने के बावजूद भी, भक्त के हृदय में एक विशेष प्रकार का आनंद या सुख प्रतीत होता है, इसी को राग कहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब उनका लखनऊ का फैक्ट्री चला गया, कहा भी कुछ पैसा नहीं बचा, चोर उचक के ले गए, मैनेजर आदि ले गए, पत्नी भी वहां टेंशन ले रही है, तो उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण की बड़ी कृपा है, या शाहम अनुग्रह नामे हरि से तदनम क्षणे, इसको राग का धरातल आप कह सकते हैं। हाँ मतलब भक्ति में जीवन में ये सब होने के बावजूद भी भक्ति करने से एक प्रकार का जो सुख मिल रहा है भक्त को, वो ये दुखों से, भौतिक दुखों से कई अधिक मात्रा में श्रेष्ठ है। तो वो दुख जैसे वर्णन आया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को मिलने गोवर्धन में गई तो एक पत्थर के ऊपर खड़ी थी और जहां कृष्ण बहुत दूर थे तो पत्थर इतना अधिक गर्म हो गया था, गोवर्धन कभी गर्म नहीं हो सकते थे, लेकिन उनको राधा और कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए गिरिराज क्या हो गए, गर्म हो गए। तो इतने गर्म हो गए कि श्रीमती राधा रानी के चरण बिल्कुल ये हो गए, फोड़े जैसे हो गए। तो लेकिन वो किनको देख रही है, कृष्ण को। उससे जो आनंद मिल रहा है ये इसका दुख उनको पता भी नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। तो इसको जो आचार्य गण है इसका वर्णन करते कि दुख है लेकिन उससे परे क्या है, जो सुख का आनंद भक्त को भक्ति करने से मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए कई बार
छह लक्षण बताए शुरुआत में, जो हैप्पीनेस आता है,
क्लेश अग्नि शुभदा मोक्षा, वो ये जो हैप्पीनेस है उससे कई और अधिक मात्रा में है, जो छह लक्षणों में से सांद्रानंद जो है। तो ये जो राग है, राग का मतलब है स्ट्रांग अटैचमेंट भगवान के प्रति, और उस अटैचमेंट के कारण जो दुख है वो क्या होता है, निम्न महसूस होता है। और जानबूझ के कई बार भक्त चाहता है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि ये गोपी रोज चंद्रमा की पूजा करती थी, क्योंकि भाद्रपद में चंद्रमा को देखना मतलब आपके जीवन में कुछ ना कुछ कलंक आना निश्चित है तो वो जानबूझ के देखती थी और वो ये सोचती थी कि सबको पता चले कि कृष्ण, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ कृष्ण के प्रति मेरा अटैचमेंट है। और उस चंद्रमा को प्रार्थना भी करती थी कि हे तारा के समूहों के हे पति, सारे चंद्र जो चांदनी है उनके जो स्वामी है, आप मेरे ऊपर कृपा करें कि ये पता चल जाए सबको कि मैं कृष्ण में आसक्त हो गई हूँ इस बार है सारे लोग मेरा त्याग कर देंगे और मैं फुल्ली कृष्ण के चरणों का आश्रय ले सकूं। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो विशेष रूप का आनंद अनुभव करता है। तो ये चीजें बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है जो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अभी हम रोज डिस्कस करते आए हैं तो थोड़ा थोड़ा हम सोचते हैं, जानते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए। और राग के आगे क्या है, अनुराग। अनुराग का मतलब ही है कृष्ण का अनुभव करता है भक्त अपने जीवन में उनके लीलाओं के द्वारा। और अनुराग का मतलब क्या है कि कृष्ण को चाहे भक्त हजार बार देखे लेकिन कृष्ण हर समय उसको नव नवायमान लगते हैं। इसको क्या कहा गया है, अनुराग कहा गया है कि कृष्ण को हम बार बार देख रहे हैं लेकिन कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कम नहीं महसूस हो रहा है, वो हर समय क्या हो रहा है, वृद्धित हो रहा है। एक तो राग हो गया, राग के आगे अनुराग। अनुराग का मतलब यही है कि नव नवम प्रियम, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि कृष्ण हमेशा नए नए लगते हैं। कि जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में वर्णन आया है जहां प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बार श्रीमती राधा रानी जब यमुना के तट पर थी ललिता आदि सखियों के संग में, तो वहां उन्होंने अपने हृदय की चीज बताई। किसको बताई, ललिता को बताई। कहती है कि मैंने काले काले एक युवक को देखा है, यमुना के तट पर देखा है, और रात को सपने में भी एक काला युवक आया था, और मैं जब जल लाने गई तब रास्ते में भी एक काला युवक मुझे नजर आया। और कहते मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूं और इतनी नीच हूं कि मेरा ये तीन प्रकार के जो पुरुष है उनमें मेरा मन चला गया है तो मतलब तीन जगह देखा लेकिन तीनों जगह कृष्ण का सौंदर्य क्या लगा उनको, और अधिक और अधिक और अधिक। हाँ ये है, ये उन्नत अनुराग का मतलब है एक्चुअली, प्रभुपाद लिखते हैं वहां। और इसी कारण से श्रीमती राधा रानी कहती है कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिले दुई। हाँ भक्ति चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कहते हैं और ब्रह्मा को डांटते कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिले दुई, कहते कि आहे ब्रह्मा आप तो सृष्टि करना जानते ही नहीं, हाँ, क्योंकि आपने करोड़ों नेत्र देने चाहिए जिसके द्वारा मैं कृष्ण को सही ढंग से देखो। और कैसे नेत्र? अपलक, जिनको पलक नहीं है, निमेश नहीं, अनिमेश। हाँ, तो इस प्रकार से इसको अनुराग कहते हैं। और अनुराग के आगे है फिर भाव, जो सेकंड भाव है जो हम पढ़ रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार से बाकी चर्चा हम कल कर सकते हैं। ये विषय ही बड़ा वो है, कठिन है। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वो शिक्षा दे रहे, तो शायद हम दो दिन इसमें बिताएंगे और फिर आगे जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको समझते हुए जाएंगे। तो इसके आगे काफी चीजें हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि फिर ये क्या है, पांच जो रस है वो एग्जैक्टली क्या है, क्यों ये उत्पन्न तैयार होते हैं, कैसे तैयार होते हैं भक्त के जीवन में, और कैसे जो शांत रति है वो रस में बदलती है। और फिर ऐसी जो चीजें हैं जो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा क्रमानुसार प्रदान करते हुए जा रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये विषय ऐसा है, ये कई शब्द ऐसी चीजें जो मुझे खुद ही समझ में नहीं आती, लेकिन जितना समझ में आएगा उतना मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शुद्धि होगी इससे। हाँ, शुद्धि के लिए चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, गौर प्रेमानंदे।